एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
सभी सुनने वालों का इस ज्ञान यात्रा में स्वागत है।
नमस्कार, आज हम बात करेंगे उन अनदेखे नियमों की जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं, यानी मानक या स्टैंडर्ड्स।
स्टैंडर्ड्स सुनने में शायद थोड़ा सूखा सा लगे, है ना?
हाँ, लगता तो है,
पर यकीन मानिए ये कहानी बेहद दिलचस्प है।
अच्छा, तो आज हम किस किताब पर बात कर रहे हैं?
हमारी चर्चा जेफरी पोमरांस और जेसन ग्रिफी की किताब स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। ये किताब उन अदृश्य धागों को सामने लाती है जिनसे हमारी आधुनिक जिंदगी, आप कह सकते हैं, बुनी हुई है।
बिल्कुल, जैसे कभी सोचा है कि कोई भी चार्जर किसी भी फोन में क्यों फिट हो जाता है, या आप दुनिया के किसी भी कोने में वाईफाई कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं?
हाँ, ये सब इन्हीं मानकों का कमाल है,
और आज की तकनीकी दुनिया में इन्हें समझना तो बहुत जरूरी है।
पर हम अक्सर इन्हें देखते ही नहीं, बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं।
हाँ, लेखक इसे ढांचागत अंधापन कहते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस।
सही, यानी जो चीजें बिल्कुल सामने हैं पर हमें दिखती नहीं।
तो चलिए आज इसी छिपी हुई दुनिया की परतें खोलते हैं।
जरूर।
तो पहले लेखकों के बारे में थोड़ा जान लें, जेफरी पोमरांस और जेसन ग्रिफी।
हाँ, जेफरी पोमरांस वो सूचना विज्ञान के प्रोफेसर हैं। उनका काम ज्यादातर डिजिटल लाइब्रेरी और मेटाडेटा पर रहा है।
मेटाडेटा यानी डेटा के बारे में डेटा, वो खुद ही एक तरह का मानक है।
बिल्कुल, तो ये विषय तो उनके खून में है, आप कह सकते हैं।
और जेसन ग्रिफी?
जेसन ग्रिफी एक लाइब्रेरियन और टेक्नोलॉजिस्ट हैं। वो इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि नई तकनीकें असल दुनिया में कैसे काम करती हैं और लोगों पर उनका क्या असर होता है।
अच्छा, तो मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल समझ भी है।
हाँ, जमीनी हकीकत की समझ, एक तरफ अकादमिक गहराई, दूसरी तरफ व्यवहारिक अनुभव।
तो ये जोड़ी मानकों को सिर्फ तकनीकी चीज नहीं मानती?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इन्हें समाज और हमारे आपसी संवाद को व्यवस्थित करने के शक्तिशाली औजार के रूप में देखते हैं।
यही बात इस किताब को खास बनाती होगी शायद।
हाँ, और वो समझते हैं कि अलग अलग सिस्टम एक साथ कैसे काम करें, जिसे तकनीकी भाषा में इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं।
तो किताब का निचोड़ क्या है, किस बारे में है ये?
जैसा हमने कहा, ये उन अदृश्य नियमों के बारे में है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं।
क्रेडिट कार्ड के साइज से लेकर इंटरनेट प्रोटोकॉल तक, सब कुछ?
हाँ, लगभग सब कुछ। किताब का मकसद है इन मानकों के रहस्य को खोलना और ये दिखाना कि ये उबाऊ तकनीकी बातें नहीं है,
बल्कि
गहरे मानवीय, सामाजिक और यहाँ तक के राजनीतिक मुद्दे हैं।
अच्छा, कहाँ से शुरू करती है किताब?
ये हमें रोजमर्रा की चीजों से शुरू करवाती है। कागज का A4 साइज,
हाँ,
बिजली के सॉकेट, USB पोर्ट,
ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल, सोचिए इनके बिना जिंदगी कितनी मुश्किल होती, पर हम सोचते भी नहीं इनके बारे में।
वही ढांचागत अंधापन वाली बात।
हाँ, सफल माना कितने कामयाब होते हैं कि अदृश्य हो जाते हैं।
और फिर
रोजमर्रा से आगे
फिर किताब बड़े पैमाने पर इनके असर को दिखाती है,
जैसे शिपिंग कंटेनर का मानकीकरण।
ओ हाँ, वो कहानी तो मैंने भी सुनी है, कमाल की है,
है ना? कैसे एक सीधे साधे आइडिया ने पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा ही बदल दिया।
और सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद ये है कि ये मानक बनते कैसे हैं, मतलब कौन बनाता है इन्हें?
सही सवाल। ये कोई आसमान से तो टपकते नहीं। किताब हमें ISO, IETF, W3C जैसे मानक बनाने वाले संगठनों की दुनिया में ले जाती है।
स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी SDOs।
हाँ, और बताती है कि ये सिर्फ इंजीनियरों का काम नहीं है।
तो फिर
ये तो रीतिमत राजनीति का खड़ा है, जहाँ कंपनियों के हित, देशों की प्राथमिकताएं, यहाँ तक कि विचारधाराएं भी टकराती हैं।
बाप रे, मतलब मानकों के पीछे इतनी राजनीति है।
बिल्कुल, चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किताब हमें इतिहास में भी ले जाती है ये दिखाने के लिए कि मानकीकरण कोई नई चीज नहीं है।
अच्छा,
जैसे सोचिए 19वीं सदी में अमेरिका और ब्रिटेन में अलग अलग चौड़ाई की रेल पटरियां थी।
अरे, तो फिर ट्रेन कैसे चलती होंगी?
माल और यात्रियों को एक ट्रेन से दूसरी में उतारना चढ़ाना पड़ता था।
कितना महंगा और धीमा रहा होगा।
बहुत ज्यादा। तो एक जैसी पटरी बनाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक देशव्यापी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी।
समझ में आता है। और फिर वो शिपिंग कंटेनर वाला उदाहरण?
हाँ, वो तो जबरदस्त है। उसे 20वीं सदी का शायद सबसे बड़ा मानक कह सकते हैं।
1950 के दशक से पहले क्या होता था?
जहाजों पर सामान लादना और उतारना भयानक मुश्किल काम था। बोरियां, पेटियां, ड्रम सब अलग अलग आकार के।
सोच सकती हूँ।
फिर आए मैल्कम मैकलीन। उन्होंने सोचा क्यों ना एक स्टैंडर्ड साइज के डिब्बे बनाए जाए
जिन्हें ट्रक, ट्रेन और जहाज तीनों पर आसानी से लादा उतारा जा सके।
एग्जैक्टली। कमाल का आइडिया था।
और उन्होंने कर दिखाया।
हाँ, कंटेनर के साइज और कोने पर लगने वाले लॉकिंग सिस्टम को स्टैंडर्ड बना दिया गया।
और नतीजा?
नतीजा, शिपिंग का खर्चा नाटकीय रूप से कम हो गया
और आज हम जिस वैश्विक व्यापार को देखते हैं वो मुमकिन हो पाया।
बाप रे, मतलब एक छोटा सा नियम
और दुनिया बदल गई।
हाँ, ये दिखाता है कि मानक सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति ला सकते हैं।
तो सवाल फिर वही है, ये नियम बनाता कौन है और कैसे?
किताब क्या कहती है इस बारे में?
किताब बताती है कि मोटे तौर पर तीन तरीके हैं।
तीन तरीके?
हाँ। पहला है डिफैक्टो मानक।
डिफैक्टो मतलब?
मतलब कोई एक तकनीक या प्रोडक्ट बाजार में इतना छा जाए कि बाकी सबको उसे ही अपनाना पड़े।
अच्छा।
जैसे?
जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज
या क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट।
हाँ, सही।
किसी ने तय नहीं किया, बस चल पड़ा।
बिल्कुल।
दूसरा है डी ज्यूर मानक।
डी ज्यूर ये कैसा है? ये औपचारिक प्रक्रिया से बनते हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त संगठन बनाते हैं, जैसे ISO,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन।
हाँ, या भारत में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
हाँ,
यहाँ बाकायदा वोटिंग होती है, नियम कानून होते हैं।
ठीक है। और तीसरा?
तीसरा है कंसोर्टिया मानक, जब कुछ कंपनियां मिलकर किसी खास मकसद के लिए मानक बनाती हैं।
अच्छा, जैसे वो ब्लूरे डिस्क के लिए हुआ था।
हाँ बिल्कुल, कई कंपनियां साथ आई थी। अक्सर ये किसी डिफैक्टो मानक का मुकाबला करने के लिए होता है।
और किताब इस पूरी प्रक्रिया के अंदर की राजनीति पर भी रोशनी डालती है।
हाँ बिल्कुल, ये संगठन काम कैसे करते हैं, जैसे IETF,
इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो इंटरनेट के ज्यादातर मानक बनाती है।
सही। उनका एक मशहूर सिद्धांत है, हम राजाओं, राष्ट्रपतियों और वोटिंग को खारिज करते हैं, हम आम सहमति और चलते हुए कोड पर विश्वास करते हैं।
अरे वाह।
मतलब जिसका आइडिया काम करेगा वो माना जाएगा, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो या अकेला डेवलपर। ये नीचे से ऊपर वाला तरीका है, बॉटम अप।
इसकी तुलना ISO जैसे संगठनों से करें तो?
वो ज्यादा औपचारिक हैं, देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, प्रक्रिया थोड़ी नौकरशाही वाली हो सकती है।
तो मुद्दा ये है कि मानक बनाने का तरीका तय करता है कि मानक कैसा बनेगा।
बिल्कुल, खुली आम सहमति वाली प्रक्रिया से शायद ऐसा मानक बने जो सबके हित में हो।
और अगर कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा हो
तो मानक उनके फायदे के लिए बन सकता है।
और यहीं से शुरू होती है मानक युद्ध या स्टैंडर्ड्स वॉर्स।
हाँ, किताब इसके कई उदाहरण देती है। सबसे क्लासिक है VHS बनाम बेटामैक्स का।
ओह हाँ, वीडियो टेप्स की लड़ाई।
सही, सोनी का बेटामैक्स टेप शायद तकनीकी रूप से बेहतर था
लेकिन जीता तो VHS।
हाँ, JVC का VHS जीत गया।
क्यों?
क्योंकि JVC ने अपनी तकनीक को ज्यादा कंपनियों को लाइसेंस दिया और ज्यादा लंबी रिकॉर्डिंग का टाइम दिया, जो लोगों को ज्यादा पसंद आया।
मतलब सिर्फ अच्छी तकनीक बनाना काफी नहीं है, बाजार की रणनीति भी मायने रखती है। ये हमें सीधे डिजिटल दुनिया में ले आता है। किताब इंटरनेट के बारे में क्या कहती है?
किताब कहती है कि इंटरनेट मानकों की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है।
कैसे?
ये उन प्रोटोकॉल्स की परतों को खोलकर समझाती है जिनके बिना इंटरनेट चल ही नहीं सकता।
जैसे?
जैसे ASCII और यूनिकोड, ये टेक्स्ट को दिखाने के मानक हैं।
हाँ, ASCII सिर्फ अंग्रेजी के लिए था, सीमित था।
सही।
फिर यूनिकोड आया जो दुनिया के लगभग हर भाषा को दिखा सकता है।
ये दिखाता है कि मानक कैसे ज्यादा समावेशी बनने के लिए विकसित होते हैं।
और फिर?
फिर आता है TCP/IP, इंटरनेट का दिल और दिमाग।
अच्छा।
किताब इसे इंटरनेट की डाक व्यवस्था की तरह समझाती है। IP एड्रेस बताता है कि डेटा पैकेट यानी चिट्ठी कहाँ जानी है।
और TCP?
TCP पक्का करता है कि सारे पैकेट सही सलामत सही क्रम में पहुंचे, मतलब पूरी चिट्ठी पहुंचे।
लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ये मानक खुले थे।
हाँ, बहुत जरूरी बात है ये, कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता था, कोई फीस नहीं थी। यही खुलापन इंटरनेट के विस्फोटक विकास की वजह बना।
और इसके ऊपर है HTTP और HTML, जिनसे वर्ल्ड वाइड वेब बना।
बिल्कुल, HTML बताता है कि वेब पेज कैसा दिखेगा और HTTP वो तरीका है जिससे हम उन पेजों को अपने ब्राउजर पर मंगाते हैं।
और ये सब भी खुले मानक थे।
हाँ, इसीलिए कोई भी वेबसाइट बना सकता था, कोई भी ब्राउजर। इसे कहते हैं अनुमति रहित नवाचार, परमिशनलेस इनोवेशन, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं।
कमाल है। लेकिन यहीं पर वो खुले बनाम बंद वाली लड़ाई फिर सामने आती होगी।
बिल्कुल, इंटरनेट के खुले मानकों की तुलना एप्पल जैसी कंपनियों के दीवारों वाले बगीचों से की जाती है,
यानी ऐसे बंद सिस्टम जहां कंपनी का पूरा नियंत्रण होता है।
हाँ, एप्पल का लाइटनिंग कनेक्टर याद है?
हाँ बिल्कुल, वो एक बंद मानक था।
वो चाहते थे कि आप उन्हीं के इकोसिस्टम में बंधे रहें और एक्सेसरी बनाने वालों से लाइसेंस फीस लें।
दूसरी तरफ यूएसबी सी है,
जो एक खुला मानक है जिसे अब यूरोपियन यूनियन ने अनिवार्य भी कर दिया है।
हाँ, इससे मुकाबला बढ़ता है और उपभोक्ता को ज्यादा विकल्प मिलते हैं।
सही कहा, ये लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि नियंत्रण और मुनाफे की है। कंपनियां कभी कभी अपने पेटेंट को मानकों में छुपा देती हैं
ताकि दूसरों को उसे इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़े।
हाँ।
बाप रे, तो इस पूरी बातचीत से कुछ बड़े सबक क्या निकलते हैं? आपके लिए सबसे जरूरी क्या है?
मेरे लिए सबसे पहला और जरूरी सबक है, मानक सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक होते हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की जरूरतें पूरी नहीं करते बल्कि बनाने वालों के मूल्यों, उनकी प्राथमिकताओं और ताकत के समीकरणों को दर्शाते हैं।
कौन तय करेगा कि भविष्य की तकनीक कैसी होगी? ये एक राजनीतिक सवाल है। मतलब ये विजेता और हारने वाले तय करते हैं।
हाँ, ये बाजार में एकाधिकार बना सकते हैं, नई कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किस तरह का नवाचार होगा और किस तरह का नहीं।
इसीलिए मानक बनाने की प्रक्रिया अक्सर इतनी विवादास्पद होती है।
एग्जैक्टली।
एक और चिंता की बात जो मुझे लगी वो है मानक बनाने की प्रक्रिया में आम आदमी की गैर मौजूदगी।
हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अक्सर इन कमेटियों में बड़ी कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों का बोलबाला होता है।
छोटे व्यापारी, आम उपभोक्ता या नागरिक समाज की आवाजें दब जाती हैं।
तो सवाल उठता है कि क्या ये मानक वाकई सबके हित में बन पाते हैं?
बिल्कुल।
और फिर वो खुले बनाम बंद मानकों की जंग तो है ही।
हाँ, जो लगातार चलती रहती है।
किताब खुले मानकों का पक्ष लेती है, दिखाती है कि कैसे इंटरनेट जैसे नवाचार उन्हीं की वजह से हुए।
बंद मानक अक्सर कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं लेकिन उपभोक्ता की पसंद और प्रतिस्पर्धा को सीमित कर सकते हैं।
सही। आखिर में मानकों को बुनियादी ढांचे की तरह देखना जरूरी है,
जैसे सड़कें, बिजली, पानी।
हाँ, इनके बिना समाज नहीं चल सकता। वैसे ही डिजिटल दुनिया इन मानकों के बिना ठप हो जाएगी।
पर हम इन पर तभी ध्यान देते हैं जब कोई चीज काम करना बंद कर देती है।
बिल्कुल। ये सोच हमें समझाती है कि मानकों पर नजर रखना और उनके बनने की प्रक्रिया में शामिल होना क्यों जरूरी है।
किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। कोई खास विचार?
हाँ, एक मुख्य विचार है। मानक असल में पर्दे के पीछे से की जाने वाली राजनीति हैं।
स्टैंडर्ड्स आर पॉलिटिक्स बाय अदर मींस।
ये साफ करता है कि ये सिर्फ तकनीकी फैसले नहीं हैं।
नहीं, बल्कि ताकत दिखाने और दुनिया को एक खास नजरिए से ढालने का तरीका है। एक और गहरी बात जो मुझे लगी, हर मानक अपने अंदर एक सिद्धांत छुपाए होता है कि दुनिया को कैसे काम करना चाहिए।
हाँ, यानी हर नियम के पीछे कुछ मान्यताएं होती हैं। उपयोगकर्ता कैसा होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, तकनीक कैसे जुड़ेगी।
इन मानकों को खुरेदने पर बनाने वालों की सोच पता चलती है।
बिल्कुल। और ये अवलोकन भी कितना सटीक है। सबसे सफल मानक वो हैं जिनके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं।
हाँ, उनके अदृश्य होने की ताकत। लेकिन यही अदृश्यता खतरनाक भी हो सकती है
क्योंकि हम उनके असर पर सवाल उठाना भूल जाते हैं।
लेखकों का ये कहना भी मायने रखता है कि खुले मानक अपने आप में बेहतर मानक नहीं होते लेकिन वे ज्यादा लोकतांत्रिक जरूर होते हैं।
हाँ, मतलब खुली प्रक्रिया से शायद तकनीकी रूप से सबसे उत्तम चीज न बने
और उसमें ज्यादा लोगों की भागीदारी और आवाज शामिल होने की गुंजाइश होती है।
सही। और अंत में ये विचार कि मानक युद्ध सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए लड़े जाते हैं।
स्टैंडर्ड्स वॉज अ फॉट नॉट जस्ट फॉर द प्रेजेंट बट फॉर द फ्यूचर।
ये बताता है कि आज लिए गए मानक के फैसले दशकों तक तकनीक का रास्ता तय कर सकते हैं।
तो ये सारी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या काम में कैसे काम आ सकते हैं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एक जागरूक उपभोक्ता बनकर।
कैसे?
अब जब हम कोई फोन या लैपटॉप खरीदें तो सोच सकते हैं कि क्या इसमें यूएसबी सी जैसा खुला पोर्ट है या कंपनी का अपना बंद पोर्ट।
हाँ, ये सिर्फ एक केबल की बात नहीं है।
नहीं, ये एक खुली या बंद व्यवस्था को चुनने का फैसला भी है।
और पेशेवरों और कारोबारियों के लिए?
उनके लिए तो ये समझना और भी जरूरी है। अपने इंडस्ट्री के मानक बनाने वाली संस्थाओं में क्या चल रहा है इस पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है। रणनीतिक फैसले हैं।
बिल्कुल। एक स्टार्टअप खुले मानकों का फायदा उठाकर बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला कर सकता है।
ये सिस्टम को समझने की सोच, सिस्टम्स थिंकिंग भी विकसित करता है।
हाँ, जैसे इंटरनेट कई परतों में बने मानकों पर चलता है। वैसे ही हम किसी भी जटिल समस्या को हिस्सों में तोड़कर समझ सकते हैं।
ये हमें किसी भी टीम वर्क में साफ साझा नियमों की अहमियत सिखाता है।
और नागरिक के तौर पर भी ये जरूरी है, ये समझने के बाद कि मानक राजनीतिक होते हैं। हम तकनीक से जुड़े नियमों और कानूनों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं।
हाँ, जैसे सरकारी डेटा के लिए खुले मानकों की मांग करना,
या उन संस्थाओं का साथ देना जो एक खुले और सबके लिए बराबर इंटरनेट के लिए काम कर रही हैं।
तो इस चर्चा से हमने जाना कि मानक सिर्फ पेच और तार नहीं है।
नहीं, बल्कि ये हमारी दुनिया को गढ़ने वाले शक्तिशाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समझौते हैं।
मुझे तो शिपिंग कंटेनर वाली कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाया, कैसे एक साधारण विचार ने दुनिया बदल दी।
हाँ, वो वाकई कमाल था। और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि इन मानकों को बनाने की प्रक्रिया कितनी मानवीय है।
मानवीय मतलब?
मतलब इसमें बहस है, राजनीति है, भविष्य की दिशा तय करने की खींचतान है। ये सिर्फ इंजीनियरों का काम नहीं है।
हमें उस ढांचागत अंधेपन से बाहर निकलना होगा।
हाँ, और पूछना होगा कि ये नियम कौन बना रहा है और क्यों।
सच में ये जानना जरूरी है।
ये नियम सिर्फ आज के लिए नहीं है,
ये हमारे आने वाले कल की बुनियाद रख रहे हैं।
और यहीं पर आज का विचारणीय बिंदु है।
क्या?
जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और डिजिटल पहचान का दौर आ रहा है, इनके मानक कौन बना रहा है? उन कमरों में, उन बैठकों में कौन लोग हैं जो ये तय कर रहे हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा?
अक्सर हमारी जानकारी के बिना। सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।